डेनियल की पुस्तक संख्या 115। अंतिम पीढ़ी की भविष्य सूचक विशेषताओं का अनावरण।
जिन्हें पीछे छोड़ दिया जा रहा है, ऐसे लोगों की अंतिम पीढ़ी में कुछ भविष्यवाणी संबंधी विशेषताएं पहचानी जाती हैं। तब वे विषधर सांपों की पीढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने शैतान का चरित्र ग्रहण कर लिया है। वे व्यभिचारियों की पीढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शत्रुओं के साथ अपवित्र संबंध बना लिए हैं। वे उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां वे देखते हैं पर समझ नहीं पाते, वे सुनते हैं पर ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वे परिवर्तित नहीं हुए हैं, जिसे उनके हृदय के मोटा हो जाने के रूप में दर्शाया गया है। मूसा ने सबसे पहले इसी घटना का उल्लेख किया, शासिंग पेढ़ी नामक फैतसा होते वक्त ये तमाम वर्षाए साफ होते। इस फैतसा से लेकर मानुष की कर्म करने से रस्तर फर्स अवस्थानी करने इसी।
और मूसा ने समूचे इसराइल को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारी आंखों के सामने यहोवा ने मिस्र देश में फिरौन पर, उसके सब सेवकों पर और उसके सारे देश पर जो जो किया है, वे सब तुमने देखे हैं। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो तुम्हारी आंखों ने देखी, वे चिन्ह और वे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, तो भी आज तक यहोवा ने तुम्हें समझने का मन, देखने को आंखें और सुनने को कान नहीं दिए। व्यवस्था विवरण 29:2-4।
देखने और सुनने की लादिकियाई परिघटना के पहले उल्लेख। परमेश्वर के लोग अपने आधारभूत इतिहास के चिन्हों और आश्चर्यों को देखने में असमर्थ हैं। यिर्मयाह इस परिघटना की पहचान अंतिम दिनों में मूर्ख कुंवारियों के एक गुण के रूप में करता है, और इसे मूर्ख कुंवारियों द्वारा तीन स्वर्गदूतों के संदेशों को स्वीकार करने से इनकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी प्रस्तुत करता है, जो पहले स्वर्गदूत की इस घोषणा से आरंभ होते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मानो। इस विद्रोह के कारण वे अंतिम वर्षा प्राप्त नहीं करते।
याकूब के घराने में ये घोषित करो और यहूदा में इसका प्रचार करो, ये कहते हुए, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, अब ये सुनो, जिनकी आंखें हैं पर वे देखते नहीं, जिनके कान हैं पर वे सुनते नहीं, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? प्रभु कहता है, क्या तुम मेरी उपस्थिति से नहीं कांपोगे? जिसने सदा के नियम से रेत को समुद्र की सीमा ठहराया है कि वो उसे पार न कर सके, और यद्यपि उसकी लहरें उछलती मचलती रहती हैं तो भी वे प्रबल नहीं हो पाती, चाहे वे गरजें तो भी वे उसे पार नहीं कर सकती। परंतु इस प्रजा का मन हठधर्मी और विद्रोही है, वे बगावत करके भटक गए हैं। वे अपने मन में ये भी नहीं कहते, आओ अब हम अपने परमेश्वर प्रभु का भय माने, जो अपने समय पर पहली और बाद की दोनों वर्षा देता है, वो हमारे लिए कटनी के नियत सप्ताह सुरक्षित रखता है। तुम्हारी अधर्मताएं इन बातों को तुमसे दूर कर लाई हैं, और तुम्हारे पापों ने भली बातें तुमसे रोक रखी हैं। यिर्मयाह 5:20-25।
ये हेश्केल ऐसे लोगों की पहचान विद्रोही घराना के रूप में करते हैं, जो देखते हैं पर समझते नहीं वाली विशेषता प्रकट करते हैं। वे एक विद्रोही घराना है जो अपनी नींव के इतिहास को देखना नहीं चाहते, जो मूर्ख कुमारियां हैं, जो परिवर्तित नहीं हुई हैं, क्योंकि वे पहले स्वर्गदूत का संदेश अस्वीकार करती हैं, जो कि उन सब को अस्वीकार करने के समान है। क्योंकि यदि तुम पहले स्वर्गदूत का संदेश स्वीकार नहीं करते, तो तुम न दूसरे को स्वीकार करना पड़ सकते हो और न तीसरे को। इस दशा में अंतिम वर्षा के समय इन कुमारियों से अंतिम वर्षा रोक ली जाती है। अपनी वाणी में जब यीशु ने इस विशेषता का उल्लेख किया, तब उन्होंने बोने वाले का दृष्टांत प्रस्तुत किया।
परंतु धन्य है तुम्हारी बांखें, क्योंकि वे देखती है, और तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता और धर्मी जन उन बातों को देखना चाहते थे जिन्हें तुम देखते हो, परंतु उन्हें देख न सके, और उन बातों को सुनना चाहते थे जिन्हें तुम सुनते हो, परंतु उन्हें सुन न सके। अतः बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनता है और उसे समझता नहीं, तब दुष्ट आकर उसके हृदय में बोई हुई बात छीन ले जाता है। ये वही है जिसमें मार्ग के किनारे बीज बोया गया था, और जिसमें पथरीली भूमि में बीज बोया गया वो है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से उसे ग्रहण करता है, परंतु उसके भीतर जड़ नहीं होती। वो थोड़ी देर टिकता है, क्योंकि वचन के कारण जब क्लेश या उत्पीड़न उठता है तो वो तुरंत ठोकर खा जाता है, और जिसमें कांटों के बीच बीज बोया गया वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन की छलना उस वचन को दबा देती है और वो निष्फल हो जाता है। परंतु जिसमें अच्छी भूमि में बीज बोया गया वो है जो वचन को सुनता और समझता है, और वही फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60, कोई 30। उसने उनसे एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली घास बो गया और चला गया, पर जब अंकुर निकले और बालें आईं तब जंगली घास भी दिखाई देने लगी। तब गृहस्वामी के दास उसके पास आए और उससे कहा, स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आ गई? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें उखाड़ लें? पर उसने कहा, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि तुम जंगली घास उखाड़ते उखाड़ते गेहूं भी उसके साथ उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली घास इकट्ठी करो और उन्हें जलाने के लिए गट्ठरों में बांध दो, पर गेहूं को मेरे कोठार में इकट्ठा कर लो। मत्ती 13:16-30।
मूर्ख लोग खरपतवार हैं और बुद्धिमान गेहूं है। 10 कुमारियों के दृष्टांत में तेल का होना ही दोनों वर्गों के बीच का भेद प्रकट करता है, और गेहूं तथा खरपतवार के मामले में ये इस पर आधारित है कि बीज जो वचन है समझा गया है या नहीं। मूसा द्वारा ऐसे वर्ग का पहला उल्लेख, जो देखेगा नहीं और इसलिए समझेगा भी नहीं, उस संदेश को जिसे समझा जाना है, आधारभूत इतिहास के चिन्हों और चमत्कारों के रूप में स्थापित करता है। एलन वाइट द्वारा विद्रोही घराने की अंधता के तत्वों के बारे में दिया गया अंतिम भविष्य सूचक संदर्भ ये दर्शाता है कि जिस बात को देखने की इच्छा सभी धर्मियों ने की, उसे देखने के लिए धन्य कही गई आंखों ने जो देखा, वो मिलर राइट आंदोलन का इतिहास था।
1840-1844 के बीच दिए गए सभी संदेशों को अब प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी दिशा बोध खो चुके हैं। ये संदेश सभी कलीसियाओं तक पहुंचने हैं। मसीह ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता और धर्मी पुरुष उन बातों को देखने की इच्छा रखते थे जिन्हें तुम देखते हो, पर उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और उन बातों को सुनने की जिन्हें तुम सुनते हो पर उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मत्ती 13:16-17। धन्य है वे आंखें जिन्होंने 1843 और 1844 में देखी गई बातें देखी। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 21, 44, 77-83, 9।
यीशु सदैव आरंभ के द्वारा अंत को दर्शाते हैं, और पहला संदर्भ उन लोगों का है जिनकी आंखें हैं पर वे न देखते हैं और न समझते हैं, और अंतिम संदर्भ ये इंगित करता है कि विद्रोही घराने का मूलभूत इतिहास वही है जो दिखाई नहीं देता और इसलिए अस्वीकार कर दिया जाता है, और इस प्रकार मूर्खों को अंतिम वर्षा को पहचानने से रोक देता है। 1840-1844 का इतिहास प्राचीन इसराइल की मिस्री दास्ता से मुक्ति द्वारा प्रतीकित था। प्राचीन इसराइल की प्रारंभिक परीक्षा में असफलता उन्हें कादेश तक ले आई, जहां उन्होंने 10 जासूसों की झूठी रिपोर्ट स्वीकार की और उन्हें मिस्र वापस ले जाने के लिए एक नया नेता चुन लिया। 40 वर्ष बाद उन्हें फिर से कादेश लाया गया, और मूसा असफल हुए क्योंकि उन्होंने चट्टान पर दूसरी बार प्रहार किया। यद्यपि मूसा असफल रहा, फिर भी यहोशू ने आगे बढ़कर उनका नेतृत्व किया और उन्हें प्रतिज्ञा देश में ले चला। कादेश में हुई अंतिम परीक्षा के साथ एक गंभीर विद्रोह जुड़ा था, क्योंकि यीशु सदैव आरंभ के द्वारा अंत को दर्शाते हैं, और 40 वर्षों की शुरुआत में कादेश में 10 भेदियों का विद्रोह तथा 40 वर्षों के अंत में कादेश में हुआ बड़ा विद्रोह दोनों ही इसका उदाहरण है। फिर भी कादेश में मूसा के विद्रोह के बावजूद प्रतिज्ञात देश में प्रवेश की दृष्टि अब और विलंबित नहीं हुई। एक से सिक्सार के विद्रोह में, जिसने 1888 के और प्रबल विद्रोह को जन्म दिया, जिसने 1819 के और प्रबल विद्रोह को जन्म दिया, जो अंततः 1957 के विद्रोह में परिणत हुआ, यीशु ने लाओदिकियाई एडवेंटवाद को कादेश में वापस लौटा दिया। वो उन्हें उस इतिहास में वापस ले आए जहां तीसरा स्वर्गदूत आया था और एक परीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ की थी, जिसने अंततः 1863 के विद्रोह और लाओदिकिया की मरुभूमि में भटकते रहने के निर्वासन को प्रकट किया। तीसरा स्वर्गदूत 11 सितंबर 2001 को लाओदिकियाई एडवेंटवाद के समापनकालीन इतिहास में तब प्रवेश कर गया जब प्रकाशित वाक्य 18 का पराक्रमी स्वर्गदूत, जो तीसरा ही स्वर्गदूत है, नीचे उतरा। तब उसने घोषणा की कि बाबुल गिर चुका है, जैसा कि निमरोद की मीनार के ढाए जाने द्वारा प्रतीकित था, जब न्यूयॉर्क सिटी के टावर गिरा दिए गए।
तीसरे स्वर्गदूत का संदेश समझा नहीं जाएगा। जो प्रकाश अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करेगा, उसे झूषा प्रकाश कहा जाएगा, उन लोगों द्वारा जो उसकी बढ़ती हुई महिमा में चलने से इनकार करते हैं। रिव्यू एंड हेराल्ड, 27 मई 1890।
जैसा प्राचीन इसराइल के साथ था, वैसा ही आधुनिक इसराइल के साथ भी है। 11 सितंबर 2001 को देखने वाली पीढ़ी अंतिम पीढ़ी है। यीशु ने लूका के अध्याय 21 में यह पीढ़ी के बारे में कहा, और उन्होंने उस पीढ़ी की पहचान उन लोगों के रूप में की जो तब जीवित होंगे जब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जो उनके दूसरे आगमन पर होगा। वो पीढ़ी जो मसीह की वापसी को देखने के लिए जीवित होगी, एक ऐसे चिन्ह को पहचान चुकी होगी जो उन्हें यह सिद्ध करता है कि वे अंतिम पीढ़ी है। वे जानेंगे और समझेंगे कि वे वही है जो तब जीवित है जब हर दर्शन का प्रभाव अब विलंबित नहीं किया जाएगा। जब यीशु चेलों के साथ मंदिर से निकल रहे थे, तो चेलों ने उनसे ये समझाने को कहा कि मंदिर के विनाश के बारे में उनके वर्णन का क्या अर्थ था। वो बातचीत उस वार्तालाप का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो अंतिम पीढ़ी में उसके शिष्य करेंगे। चेलों ने ये समझना चाहा कि जब उन्होंने बार बार ये सिखाया है कि शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय लाओदिकिया एडवेंटिस्ट कलीसिया बहा दी जाएगी, क्योंकि उसके भीतर के उपासक उसके मुख से उगल दिए जाते हैं और वे अब उसकी ओर से बोलने वाले नहीं रहते, तब उनका क्या अर्थ है। शिष्यों को उत्तर देते हुए यीशु ने यरूशलेम के विनाश और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन किया जो संसार के अंत तक चलती हैं। 19वें पद तक ऐतिहासिक सारांश प्रस्तुत करने के बाद वो यरूशलेम के विनाश की चर्चा करता है। ऐसा विनाश जो क्रूस पर ही घटित हो सकता था, परंतु परमेश्वर की करुणा और दीर्घ धैर्य के कारण लगभग 40 वर्षों के लिए टाल दिया गया। उन 40 वर्षों के अंत में कुछ शेष लोग विनाश से बच निकलेंगे, परंतु केवल तब जब वे उस चिन्ह को पहचान लें जो उसने तब दिया था। प्राचीन इसराइल की शुरुआत में 40 वर्षों की अवधि, जो 10 जासूसों के विद्रोह पर दिए गए उस न्याय से आरंभ हुई जिसे मूसा की मध्यस्थता के कारण 40 वर्षों के लिए टाल दिया गया। प्राचीन इसराइल के अंत में क्रूस के विद्रोह पर भी एक न्याय था जिसे मसीह के दीर्घ धैर्य और दया की मध्यस्थता के कारण 40 वर्षों के लिए टाल दिया गया। दोनों इतिहासों में कुछ शेष लोग बच निकले। यीशु सदैव किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं। यीशु ने यरूशलेम के विनाश से जुड़े चिन्ह पर चर्चा की और उसे प्रतिशोध के दिन कहा,
और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उसका उजाड़ होना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं, और जो उसके भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वे उसमें प्रवेश न करें, क्योंकि ये बदला लेने के दिन है, ताकि जो कुछ लिखा हुआ है वो सब पूरा हो। लूका 21:23-22।
प्रतिशोध के दिन से आशय अंतिम 7 विपत्तियों से है, और इसी कारण सिस्टर व्हाइट यरूशलेम के विनाश को अंतिम दिनों में होने वाले परमेश्वर के कार्यकारी न्याय के साथ जोड़ती है।
हे राष्ट्रों, सुनने के लिए निकट आओ, हे लोगों कान लगाओ, पृथ्वी सुने और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उससे निकलता है, सब सुने, क्योंकि यहोवा का रोष सब राष्ट्रों पर है और उसका प्रकोप उनकी सब सेनाओं पर। उसने उन्हें पूरी तरह नाश कर दिया है, वह उन्हें वध के लिए सौंप चुका है। उनके मारे हुए भी बाहर फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों से दुर्गंध उठेगी और पर्वत उनके रक्त से पिघल जाएंगे और आकाश की सारी सेना घुल जाएगी और आकाश एक ग्रंथ की तरह लपेट दिया जाएगा और उसकी सारी सेना गिर पड़ेगी, जैसे बेल से पत्ता गिरता है और जैसे अंजीर वृक्ष से गिरता हुआ अंजीर, क्योंकि मेरी तलवार स्वर्ग में नहलाई जाएगी। देखो, वह इदूमिया पर और मेरे शाप के लोगों पर न्याय के लिए उतरेगी। यहोवा की तलवार रक्त से भर गई है, वह चर्बी से तृप्त की गई है, मेमनों और बकरों के रक्त से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से, क्योंकि यहोवा के पास बोसरा में एक बलि है और इदूमिया के देश में बड़ा वध, और उनके साथ एक सींग वाले भी उतरेंगे और बछड़े सांडों के साथ, और उनकी भूमि रक्त से भीग जाएगी और उनकी धूल चर्बी से चिकनी कर दी जाएगी, क्योंकि यहोवा के प्रतिशोध का दिन है और सियोन के विवाद के बदले का वर्ष। यशाया 33:1-8।
यीशु ने नासरत में अपना पहला सार्वजनिक प्रवचन दिया जिसमें उन्होंने स्वयं को मसीहा घोषित किया। वो प्रस्तुति भविष्यवाणी की दृष्टि से प्रथम उल्लेख के नियम द्वारा संचालित थी। जिस पाठ को उन्होंने चुना वो ये दर्शाता था कि उनके कार्य में प्रभु के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करना था भी शामिल है। यशाया के अनुसार ये सियोन के विवाद के प्रतिफलों का वर्ष भी है। नासरत में ही मसीह ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की और स्वयं को मसीहा घोषित किया। तब वे लोग जिन्होंने उसके वचन सुने पर समझ न पाए, उसे पहाड़ से नीचे गिराकर मारने का प्रयास किया। उसकी सेवकाई की शुरुआत उसके गृहनगर के लोगों द्वारा उसे मारने के प्रयास से चिह्नित हुई और उसकी सेवकाई के अंत में उसके ही लोगों ने उसे मार डाला। उसकी सेवकाई का उद्देश्य स्वयं को मसीहा के रूप में पहचान कराना था, जो वो अपने बपतिस्मा के समय अभिषिक्त होने पर बना। उसके बपतिस्मा के समय एक दिव्य चिन्ह उतरा जिससे आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी की पूर्ति का अनुमोदन हुआ। 11 अगस्त 1840 को एक दिव्य चिन्ह उतरा ताकि उस इतिहास के परीक्षण संदेश की भविष्यवाणी का अनुमोदन हो, और 11 सितंबर 2001 को एक दिव्य चिन्ह उतरा ताकि उस इतिहास के भविष्यवाणी किए गए संदेश का अनुमोदन हो, जो अंतिम वर्षा का संदेश है।
समरियों के साथ 2 दिन परिश्रम करने के बाद यीशु उन्हें छोड़कर गलील की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे नासरत में नहीं ठहरे जहाँ उन्होंने अपना बाल्यकाल और आरंभिक युवावस्था बिताई थी। वहां के आराधनालय में जब उन्होंने ये घोषित किया कि वे परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, तो उनका स्वागत इतना प्रतिकूल रहा कि उन्होंने अधिक फलदायी क्षेत्र खोजने का निश्चय किया। ऐसे कान जो सुने और ऐसे हृदय जो उनका संदेश ग्रहण करें। उन्होंने अपने चेलों के कहा कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश में आदर नहीं होता। ये कहावत उस स्वाभाविक अनिच्छा को प्रकट करती है जो बहुत से लोगों में होती है कि वे ऐसे व्यक्ति में किसी अद्भुत और सराहनीय विकास को मानने से कतराते हैं जिसने बिना आडंबर के उनके बीच जीवन बिताया हो और जिसे वे बचपन से निकटता से जानते रहे हों। इसी समय यही लोग किसी अजनबी और दुस्साहसी व्यक्ति के दम्भपूर्ण दामों पर बेतहाशा उत्साहित हो सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, खंड 2:118।
लूका अध्याय 21 में मसीह 144,000 की पहचान करते हैं जो वो अंतिम पीढ़ी है जो नहीं मरती। वो ऐसा उस इतिहास को प्रस्तुत करके करते हैं जो शुरू हुआ था उनकी अंतिम उस यात्रा से, जब वे उस स्थान पर गए थे जो पहले उनके पिता का घर था पर बाद में यहूदियों का घर बन गया था। जिस इतिहास का वर्णन यीशु ने आरंभ किया उसमें वे उस बिंदु तक पहुंचे जहां यरूशलेम और वो मंदिर जिसके बारे में चेलों ने जानना चाहा था नष्ट किया जाने वाला था। 70 ईस्वी। उन्होंने उस विनाश को प्रतिशोध के दिन कहा, जो उनकी सेवा की प्रारंभिक घोषणा का एक भाग था। प्रतिशोध के दिन केवल 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि परमेश्वर के क्रोध के उस समय का भी, जो 7 अंतिम विपत्तियों में प्रदर्शित है।
क्योंकि ये सेनाओं के प्रभु परमेश्वर का दिन है, प्रतिशोध का दिन, कि वो अपने शत्रुओं से बदला ले और तलवार भक्ष करेगी और उनके रक्त से तृप्त होकर मतवाली हो जाएगी। क्योंकि सेनाओं के प्रभु परमेश्वर का यूफ्रात नदी के किनारे उत्तर देश में एक बलिदान है, यिर्मयाह 46:23।
बाबुल पर प्रतिशोध का दिन, जिसका प्रतीक यूफ्रेटिस नदी के किनारे उत्तरी देश में होने वाला बलिदान है, शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होता है।
यहोवा के क्रोध के कारण वो बसाई न जाएगी, परंतु सर्वथा उजाड़ हो जाएगी। जो कोई बाबुल के पास से जाएगा वो चकित होगा और उसकी सब मारों पर सीटी बजाएगा। बाबुल के विरुद्ध चारों ओर से युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध हो जाओ। हे धनुष खींचने वालों, उस पर तीर चलाओ, किसी बाण को ना बचाओ, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उसके विरुद्ध जय जयकार करो, उसने समर्पण कर दिया है, उसकी नेवें गिर गई हैं, उसकी दीवारें ढा दी गई हैं। क्योंकि यहोवा का पलटा है, उसके ऊपर पलटा लो, जिस प्रकार उसने किया उसी प्रकार तुम भी उसके साथ करो। बाबुल से बीज बोने वाले को और कटनी के समय हसिया चलाने वाले को काट डालो। अत्याचारी तलवार के भय से वे सब के सब अपनी अपनी प्रजा की ओर फिर जाएंगे और हर एक अपने अपने देश को भाग जाएगा। इज़राइल तितर बितर हुई भेड़ है, सिंहों ने उसे हाँक दिया है। पहले अश्शूर के राजा ने उसे निगल लिया और अंत में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ डाली। इस कारण सेनाओं का यहोवा इसराइल का परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं बाबुल के राजा और उसके देश को दंड दूंगा, जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया, और मैं इसराइल को फिर उसके निवास स्थान में ले आऊंगा, और वो कर्मेल और बाशान में चराया जाएगा, और इफ्रैम और गिलाद के पर्वत पर उसका प्राण तृप्त होगा। उन दिनों और उस समय यहोवा की ये वाणी है, इसराइल का अधर्म ढूंढा जाएगा पर वो न मिलेगा, और यहूदा के पाप भी, परंतु वे नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जिनको मैं बचा रखूंगा उन्हें मैं क्षमा करूंगा। मेरा तैम के देश पर चढ़ो, हाँ उसके विरुद्ध और पेकोद के रहने वालों के विरुद्ध यहोवा की ये वाणी है, नाश करो और उनके पीछे पीछे पूरी रीति से विनाश करो, और जो कुछ मैंने तुझे आज्ञा दी है उसके अनुसार कर। देश में युद्ध का शब्द है और बड़े विनाश का। कैसे पृथ्वी का हथौड़ा टूट टूट कर चकनाचूर हो गया, कैसे बाबुल जातियों के बीच उजाड़ बन गया। मैंने तेरे लिए फंदा बिछाया है, और हे बाबुल तू पकड़ी गई है और तुझे मालूम भी न हुआ। तू पाई गई और पकड़ी भी गई है, क्योंकि तूने यहोवा के विरुद्ध विरोध किया। यहोवा ने अपना शस्त्रागार खोल दिया है और अपने क्रोध के हथियार निकाल लाया है, क्योंकि ये कसदियों के देश में सेनाओं का प्रभु यहोवा का काम है। दूर की सीमा से उसके विरुद्ध आओ, उसके भंडार गृह खोलो, उसे ढेरों की नाई ढेर कर दो और उसे पूरी रीति से नाश कर दो, उसमें कुछ भी शेष न रहने दो। उसके सब बैलों को मार डालो, वे वध के लिए नीचे उतरे। हाय उन पर, क्योंकि उनका दिन आ पहुंचा है, उनके दंड देने का समय। बाबुल देश से भागकर बच निकलने वालों का ये शब्द है कि वे सियोन में जाकर हमारे परमेश्वर यहोवा का पलटा, उसके मंदिर का पलटा घोषित करें। बाबुल के विरुद्ध धनुर्धारियों को एकत्र करो, हे धनुष खींचने वालों, उसके विरुद्ध चारों ओर डेरा डालो, उसमें से कोई निकल न पाए। उसके काम के अनुसार उसको बदला दो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इसराइल के पवित्र के विरुद्ध घमंड किया है। यिर्मयाह 50:13-29 ने।
सन 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश बाबुल की व्यभिचारिणी पर होने वाले दंडात्मक न्याय का प्रतीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होगा। यीशु जानते थे कि वे सन 70 ईस्वी को शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के रूप में पहचान रहे थे, क्योंकि वही अपने वचन के लेखक है और वही वचन है। ये समझने के लिए कि वो कौन सा चिन्ह है जो ये पहचान कराता है कि अंतिम पीढ़ी आ पहुंची है, लूका अध्याय 21 में यीशु जो भविष्यवाणी प्रस्तुत करते हैं उसकी पृष्ठभूमि को पहचानना महत्वपूर्ण है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
मसीह का आगमन इस पृथ्वी के इतिहास के सबसे अंधकारमय काल में होगा। नूह और लूत के दिन मनुष्य के पुत्र के आने से ठीक पहले संसार की दशा को दर्शाते हैं। पवित्र शास्त्र इस समय की ओर संकेत करते हुए घोषित करते हैं कि शैतान अपनी समस्त शक्ति के साथ और अधर्म की हर प्रकार की छलना के साथ काम करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10। इन अंतिम दिनों में तेजी से बढ़ते अंधकार, असंख्य भूलों, विधर्मों और भ्रमों से उसका कार्य स्पष्ट प्रकट होता है। शैतान न केवल संसार को बंदी बनाकर ले जा रहा है, बल्कि उसकी छलनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह की नामधारी कलीसियाओं में खमीर की तरह फैल रही हैं। महान धर्म त्याग विकसित होकर आधी रात जितने गहन अंधकार में बदल जाएगा। परमेश्वर के लोगों के लिए वो परीक्षा की रात, रुदन की रात और सत्य के कारण सताव की रात होगी, परंतु उस अंधकार की रात में से परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। वो अंधकार में से प्रकाश चमका देता है। 2 कुरिन्थियों 4:6। जब पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:2-3। इसी प्रकार आत्मिक अंधकार की रात में परमेश्वर का वचन निकलता है, उजियाला हो। अपने लोगों से वो कहता है, उठ चमक, कि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हुई है। यशाया 60:1। देखो, शास्त्र कहता है, अंधकार पृथ्वी को ढकलेगा और घोर अंधकार लोगों को, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसकी महिमा तेरे ऊपर प्रकट होगी। 2 मसीह, जो पिता की महिमा की ज्योति का प्रकाश है, संसार के लिए ज्योति बनकर आए। वे मनुष्यों के सम्मुख परमेश्वर को प्रकट करने आए, और उनके विषय में लिखा है कि वे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त थे और भलाई करते फिरते रहें। प्रेषितों के काम 10:38। नासरत की आराधनालय में उन्होंने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया है। उसने मुझे टूटे मन वालों को चंगा करने, बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने और अंधों को दृष्टि मिलने की घोषणा करने, कुचले हुए लोगों को स्वतंत्र करने और प्रभु के स्वीकार्य वर्ष का प्रचार करने के लिए भेजा है। लूका 4:18-19। इसी काम के लिए उन्होंने अपने चेलों को नियुक्त किया। उन्होंने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, ऐसा तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मत्ती 5:13। सुरा भविष्य दक्ता और राजा 2:10-2:73।